Kunjavihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunjavihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodhanandana Vrajana Ranjana. Yashodhanandana Vrajana Ranjana. Ramonatira Vanachare. Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dare Radha, Dare Dare Radhe. Jai Jagana, Jai Jagana, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Sankara Hariva, 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 Hariva. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Nasya Prahesa Badresu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. bhaktir bhavati naishyaki. Kumajnadirandasya jnananjana shalakaya chakshuranmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Sri Chaitanya manobhishtam sthapitam yena bhutale svayam rupa kadamayam tadadishva padantikam. Vandeham Sri Guru Sri Uttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Saganaragunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saganaravita Sri Visakamitam Namo Mishra Badaya Krishna Prashaya Putale Srimate Bhakti Vedanta Swami Chinamine Namaste Saraswate Deve Kauravani Prasarine Vinishesha Sunyavani Achyastade Chakarine Namo Mishra Padaya Krishna Prashaya Putale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Nitinamine Sri Vaishnavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadya Sri Rupanada Bhaktida Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastade Namaste Gauravani Sri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Dvantaharine Namo Gaura Kishoraya Saksha Vairagya Murtaye Vipralambara Sambode Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinogaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanugavarayate Gaura Virbhava Bhumesvam Nirdesha Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Namaha Vancha Kalpataru Vyasya Vipasindhu Vyayevacha Satchidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurakrishai Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam He Krishna Karuna Sindhav Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Adha Kanta Namastate Jaitam Surasaur Pangur Mamandra Mater Gati Mastarvasva Padam Bojo Radha Madana Mohanam Divya Vrindaranya Kalpadramadaha Sri Madratna Gara Simhasanastav Madrada Sri Lagovinda Devo Prashnale Vese Vimana Svarami Sriman Rasarasarambi Sita Karsham Venu Svaner Gopir Gopinata Sri Estunaha Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. तो क्या सुनना चाहते हैं? मैं तैयारी करके नहीं आया हूँ. ठीक है, आप में से कितने लोगों के पास भगवद गीता है या नहीं है? कितने लोगों के पास नहीं है भगवद गीता?
गोस्वामी तो कॉपी बहुत सॉन्ग बहुत सही भगवदगीता की। चलिए जिनके पास नहीं है वो लोग आज खरीदेंगे। आज भगवदगीता का सोचा कि पहला श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। आप में से कितने लोगों को भगवदगीता का पहला श्लोक याद है? पहला अध्याय का पहला श्लोक बताइए आप। कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवा सेवा किमकुर्वत संजया। भूल गया आप श्लोक। अच्छा ऐसा नहीं आता, सीधा आता है। ठीक है, भगवद गीता का पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये श्लोक को किसने उच्चारण किया? धृतराष्ट्र ने उच्चारण किया। किसको कहा उन्होंने? संजय को कहा। तो संजय को क्या कहते हैं धृतराष्ट्र? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवा सेव किमकुर्वत संजय। हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक धर्मक्षेत्र में मेरे मामका और पांडवों के पुत्र पांडव दोनों समवेता एकत्रित हुए युद्ध करने के लिए, और उन्होंने क्या किया उनका प्रश्न है इस श्लोक का। सबसे पहला ध्यान में रखना चाहिए धृतराष्ट्र अंधा था, इससे वो युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो संजय से उनने प्रश्न पूछा। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह का वो शरीर बाणों की शैया पर लेट गए। दसवां दिन में लेटने के बाद संजय वापस आए महल में, कुरुक्षेत्र छोड़ के धृतराष्ट्र से मिलने के लिए महल में आए, धृतराष्ट्र को खबर देने के लिए कि भीष्म पितामह अपने हथियार को त्याग कर दिए हैं, बाणों की शैया पर लेटे हुए। तुरंत इस बात को सुनते धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय बताओ क्या हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है धृतराष्ट्र के द्वारा। सबसे पहला ध्यान में रखना चाहिए धृतराष्ट्र भले ही अंधा था लेकिन वो ज्ञानी था। उनको मालूम है कि ये जो कुरुक्षेत्र है वो क्या है, वो धर्म क्षेत्र है। धृतराष्ट्र को ये बात मालूम था कि कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र है। क्यों धर्म क्षेत्र है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि हजारों सालों पहले एक राजा था कुरु करके। एक कुरु नामक राजा ने उधर बड़ी तपस्या किया, यज्ञ किया। उनका ये इच्छा था कि जो भी व्यक्ति इधर उनका शरीर त्याग करता है कुरुक्षेत्र में उनको स्वर्ग जाना। लेकिन इंद्र परीक्षा ले रहा था कुरु राजा कुरु का, उस यज्ञ का फल नहीं प्रदान कर रहा था, उपहास भी कर रहा था गुरु को, क्या है किस प्रकार का क्या कर रहा है छोड़ दे सब। लेकिन इतना करने के बाद भी राजा कुरु ने क्या किया, अपना यज्ञ को जारी रखा। सफलता मिले ना मिले मेरा कर्तव्य है यज्ञ करना, इसलिए मैं करते जाऊंगा करके राजा यज्ञ करते गए। जब यज्ञ करते गए अनेकों देवता लोगों ने आके कहा इंद्र को देखो कितना निष्ठावान भक्त है, उनको आप दर्शन दीजिए। तो इंद्र प्रसन्न होकर उनके पास गए तो राजा कुरु को कहा ठीक है आपका इच्छा पूरा होगा, जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में उसका मृत्यु होगा वो स्वर्ग जाएगा। दूसरा और एक मैं घोषणा करता हूं, भविष्य में इसी स्थान में धर्म की स्थापना होगी करके उन्होंने दो वरदान दिए। इसलिए इस जगह पे भविष्य में धर्म की स्थापना होगी, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने के पीछे और एक उद्देश्य है। परशुराम जी अनेकों विश्व भर में जाके क्षत्रियों को वध करके, जब कुछ लोगों ने कहा ब्राह्मणों ने कहा आप इतने लोगों को मार रहे हो आपको पाप लगा, वैसे भगवान को पाप नहीं लगता लेकिन लीला के संबंध में उन्होंने कहा कि आपको तपस्या करना होगा, आपको प्रायश्चित करना होगा, तो क्या करना होगा, तो कुरुक्षेत्र में जाके आप तपस्या कीजिए, समन्त पंचकम। तो परशुराम की तपस्थली है इसलिए उसको अभी धर्मक्षेत्र कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहने के पीछे तीसरा कारण क्या है? पहला कारण था राजा कुरु, दूसरा कारण था परशुराम जी, तीसरा कारण था कुरुक्षेत्रम देव यजनम, देवता लोगों के लिए यज्ञ करने का स्थान है। वो स्वर्ग लोक में भी यज्ञ कर पाते जितना अच्छा कुरुक्षेत्र नहीं कर पाते, इससे देवता लोग आके उधर यज्ञ करते थे, इससे कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहने के पीछे चौथा कारण क्या है? इधर अभी कौन सा युद्ध चल रहा है? अधर्म युद्ध चल रहा है, कौन सा युद्ध चल रहा है? धर्म युद्ध चल रहा है। आजकल युद्ध चलते हैं वो अधर्म युद्ध चलता है, दो अधर्मिक व्यक्तियों के बीच में युद्ध जो है वो अधर्म युद्ध है। बहुत साल पहले अमेरिका और इराक के बीच युद्ध हो रहा था कि नहीं, बहुत साल पहले, तो उस समय मुझे किसी ने पूछा, प्रभु जी आप किसको सपोर्ट करोगे? तो मैंने पूछा, अगर रावण और हिरण्यकश्यपु दोनों युद्ध करने लग जाए आप किसको सपोर्ट करोगे? तो किसी ने पूछा, प्रभु जी कौन सा पार्टी जीतना चाहिए? यही है, रावण और हिरण्यकश्यपु दोनों इलेक्शन में खड़े होंगे, आप किसको वोट देंगे? हाँ, किसको वोट देंगे प्रभु जी? कितने लोग रावण को वोट देंगे? हाथ उठाइए। हिरण्यकश्यपु को हंस रहे हैं, वोट तो देना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? किसको वोट देंगे? हाँ, इसलिए वो लोग कहते हैं कि सब लोग खड़े होते हैं राजनीतिक लोग वोट के लिए, साथ में और एक वोट होना चाहिए, हम किसी को नहीं देंगे, सब नालायक है, उसका भी एक वोट होना चाहिए। अगर उसको राजी हो जाएगा सरकार तो क्या होगा मालूम है? सब नालायक है, जितने भी खड़े हैं सब बदमाश है, ये सिद्ध हो जाएगा, इसलिए वो घबराते हैं। मान लो कि इलेक्शन में पांच लोग खड़े हैं तो पांच बैलेट रहता है, जहां चाहे उधर वोट लगा सकते हो। छठा भी चीज होना चाहिए, मैं इन चीजों में एक को भी वोट नहीं दूंगा क्योंकि इनमें से एक भी योग्य नहीं है मेरे विचार से। अगर ऐसा कोई बन जाए कानून तो क्या होगा मालूम है? एक जीत जाएगा, फिर वापस इलेक्शन करना पड़ेगा, इलेक्शन ही करते रहे कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि तो कुरुक्षेत्र में अभी कौन सा युद्ध चल रहा है? धर्म युद्ध चल रहा है। जब पांडव और कौरव युद्ध करते थे शाम के समय, युद्ध समाप्त होने के बाद, यानी सूर्यास्त के और कोई युद्ध नहीं करता है, सूर्यास्त के बाद सब साथ में बैठकर खेलते थे, साथ में बैठकर खाते थे, कल से फिर करवा दे के एक दूसरे से युद्ध करे जाएंगे। अब देखिए उनके मन में एक दूसरे को द्वेष नहीं था, युद्ध कर रहे थे लेकिन द्वेष नहीं था। ये बहुत हाई क्लास युद्ध चल रहा था वो टाइम में, इसलिए उसको धर्म युद्ध कहा गया है। ये चौथा कारण है धर्मक्षेत्र कहने के पीछे। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र और एक महत्वपूर्ण कारण की वजह से किया जा रहा है, वो मालूम है किनको? धृतराष्ट्र को। क्या है वो कारण? पांचवा कारण, स्वयं भगवान उपस्थित है। स्वयं भगवान उपस्थित, जो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप स्वयं भगवान है, वो जगह को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो इसलिए पांच कारणों की वजह से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। अभी धृतराष्ट्र को यह बात मालूम है कि कृष्ण भगवान है और उनको मालूम है, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है और उनको मालूम है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण उपस्थित है। मालूम होने पर भी धृतराष्ट्र का क्या प्रश्न था संजय से? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे पुत्र, मामका का अर्थ क्या है? मेरे पुत्र, और पांडवा का पांडवाश्चैव कर दिया है पांडु के पुत्र। हस्यत में पांडु का मृत्यु होने के बाद धृतराष्ट्र का भाई है पांडु, तो पांडु के पुत्रों को भी अपना पुत्र जैसा मानना चाहिए कि नहीं? अगर भाई का मृत्यु होता है, भाई का पुत्र जो है वो उनको अपनी पिताजी का जो मृत्यु का उनका अभाव का एहसास नहीं होने देना, ये भाई का कर्तव्य है। लेकिन अभी भी क्या कहता है, माम का मेरे पुत्र और पांडवा सेवा किम गुर्वत संजय, हे संजय क्या हुआ बताओ, क्या किए बताओ। तो इससे क्या पता लगता है धृतराष्ट्र के मन में क्या था? आसक्ति था है कि नहीं? किसके प्रति आसक्ति था? हाँ, अपने पुत्रों के प्रति कि उनको आसक्ति था, अरे मेरा पुत्र ना मर जाए ऐसा लग रहा है। कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, हे संजय मेरे पुत्र सही सलामत है कि नहीं, मेरे पुत्र जीत रहे कि नहीं, ऐसा धृतराष्ट्र का डर था कहीं मेरे पुत्र हार ना जाए। सोचते हैं कि नहीं? उनको डर क्यों था मेरे पुत्र हार ना जाए? क्यों? कृष्ण उपस्थित है कहां, किसके पक्ष में? पांडवों के पक्ष में। धृतराष्ट्र को मालूम था कृष्ण पांडवों के पक्ष में है और उनको डर था। क्या डर था? कि कहीं मेरा पुत्र हार ना जाए, मर ना जाए, ये डर था। इससे क्या पूछता है कि मामका पांडवास्तेव किम कुर्वता। लेकिन ध्यान रखिएगा, धृतराष्ट्र का ऐसा लग रहा है कि उनका डर उनके पुत्रों के प्रति है, उनका पुत्रों के प्रति आसक्त होने के वजह से वो कहीं मर ना जाए उसका डर है, मेरे पुत्र मर ना जाए इसका डर है। लेकिन वास्तविकता में ये श्लोक में धृतराष्ट्र का ये जो दिखाई पड़ रहा अपने पुत्र के प्रति आसक्ति से उत्पन्न हुआ जो डर है वो केवल बहिरंगिक चीज मात्र है। लेकिन अंदर में वास्तविकता में धृतराष्ट्र का मन में क्या चल रहा है हम थोड़ा जानने के लिए प्रयास करेंगे। वैसे कोई भी व्यक्ति इस श्लोक को पढ़ेगा ऐसा लगता है कि देखो पुत्र मोह में, कौन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में डरा हुआ था कहीं पुत्र को पुत्र मरना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जय श्री चिराधार गिरधार भगवान की, जगन्नाथ सुभद्रा, हम थोड़ा सा विचार करते हैं। आप देखिए इस श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को क्या कहा धृतराष्ट्र ने? धर्म क्षेत्र कहा। आगे उन्होंने क्या कहा? सेकंड लाइन क्या, दूसरा लाइन क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, क्या कहा उन्होंने? समवेता, एकत्रित हुए हैं। किसके लिए एकत्रित हुए हैं? किसके लिए एकत्रित हुए युद्ध करने के लिए? कौन कह रहा है युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए करके? और पूछा क्या उसने? कुछ लग रहा है क्या आपको? कुछ गड़बड़ है इसमें? हाँ, आप बोलोगे अभी प्रभु जी ये तो खाने के लिए बैठा है, भूख लगा हुआ है, सामने 56 रुपए का प्लेट है, क्या किया? कुछ गड़बड़ लग रहा है पवित्रा, पहले श्लोक में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखते हैं, बहुत भारी गड़बड़ है। धृतराष्ट्र स्वयं कहता है, क्या कह रहा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव किम कुर्वता। वो खुद कह रहा है, संजय मेरे पुत्र और पांडव दोनों युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्या किया? इसके पीछे धृतराष्ट्र के मन में क्या है वो संजय समझ गए। क्या समझ गए संजय? धृतराष्ट्र का मन को जान गए। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछे, किम कुर्वता, हे संजय जरा बताओ तो सही, मेरे और पुत्र और पांडव युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए, कहीं युद्ध कर रहे कि नहीं? कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरा अधर्मिक पुत्र धार्मिक बन के पांडवों के साथ समझौता तो नहीं कर रहा है ना? धृतराष्ट्र का डर क्या था, कहीं उनके पुत्र पांडवों के साथ समझौता ना कर बैठे, अगर समझौता कर दिया तो क्या होगा, उनका सीट हिल जाएगा। अभी धृतराष्ट्र का समस्या क्या था, उनका आसक्ति किसके प्रति था, कौन कह सकता है, उनके सिंहासन प्रति आसक्ति था, क्या पुत्र के प्रति आसक्ति था। अभी देखिए युद्ध प्रारंभ होने से पहले व्यासदेव धृतराष्ट्र से मिलने के लिए आए थे, जब धृतराष्ट्र ने पूछा व्यासदेव से, व्यासदेव ने कहा धृतराष्ट्र को मैं तुमको ये अपने आंख दिला सकता हूं, धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। व्यासदेव त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। तब व्यासदेव ने खुलेआम धृतराष्ट्र को कहा था कि तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मर जाएंगे, युद्ध में सब हार जाएंगे। जब धृतराष्ट्र ने कहा मुझे आंख नहीं चाहिए क्योंकि जीवित समय मैं अपने पुत्रों को नहीं देखा तो मरा हुआ पुत्रों को क्यों देखूंगा, यह युद्ध के पहले की बात है। यानी धृतराष्ट्र को 100% मालूम है कि उनका पुत्र मरने वाले हैं। धृतराष्ट्र को यह भी मालूम है कि कृष्ण भगवान है और वो किसके पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में है, इसलिए मेरे पुत्रों का हारना निश्चित है, मरना निश्चित है, धृतराष्ट्र को मालूम था। मान लीजिए बहुत सारे माता पिता है, अगर आपको मालूम है आपका लड़का एक जगह जाएगा तो वो मरने वाला है तो आप भेजोगे उधर, क्यों नहीं भेजोगे आप, क्योंकि उनके प्रति आसक्त हो। लेकिन अभी धृतराष्ट्र को मालूम था कि दुर्योधन मरने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, दुर्योधन जाओ लड़ युद्ध करो। एक दूसरा बात, इतना ही नहीं, उनको डर था कि दुर्योधन कहीं धार्मिक ना बन जाए, धर्म क्षेत्र के प्रभाव से कहीं धार्मिक ना बन जाए। होता है ना घरों में, बहुत साल पहले की बात है, मैं सीधा बच्चों का प्रोग्राम बहुत देता था, अभी भी होता है, अन्य भक्त बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों का प्रोग्राम अच्छी तरह से ले रहे हैं, शुरुआत में अकेले लेता था। तो एक बार एक परिवार आया, माता पिता दोनों आए और बोले लगे प्रभु जी ये बच्चे को समझाइए जरा, बच्चे के साथ आए, ये मंदिर आने को बोलिए कुछ आता नहीं है, सब हमेशा टीवी देखता रहता है, वो है ये है, सब कंप्लेंट देने लगे। तो मैं थोड़ा सा प्रेम से बच्चे से थोड़ा बोला चलो बच्चों का प्रोग्राम है आओ। तो लड़का तकरीबन 7 या 8 क्लास में था, वो आना शुरू किया, हर रविवार को आना शुरू किया, रविवार को आता है तो फिर पूरा रविवार इधर रह जाता है, कुछ सेवा करता रहता है, अच्छा एकदम बिल्कुल अच्छा भक्त बन गया। बाद में 1-2 हफ्ता नहीं आया तो मैंने पूछा, मैंने फोन किया कि घर में क्या तबीयत ठीक है कि नहीं लड़के का, तो उनकी पिताजी ने उठाया, नहीं सब ठीक है। मैं पूछा क्यों नहीं आ रहा है, नहीं अभी क्या परीक्षा वगैरह है ना, ऐसा मैंने बोला अभी कौन सा परीक्षा है भाई। तब एक दिन वो लड़का ने मुझे फोन किया, बोला प्रभु जी मुझे मेरी माँ आने नहीं दे रही है। तब मैं समझ गया कहीं धर्म क्षेत्र में आके धार्मिक ना बन जाए। पहले वही माँ ने कहा था इसको इसको मंदिर बुलाइए, मंदिर में जाना बस, जाके आना बस, ज्यादा देर बैठना नहीं उधर। वो भी कमलोचन के साथ। तो ये डर है, ये धृतराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र की भावना हर जगह है, परिवार में होता है ना, अगर पत्नी बहुत सीरियस है तो उसका पति जो है उसको डर लगता है कहीं ये पूरा इधर ही चली जाएगी, अभी मेरा क्या होगा। अगर पति थोड़ा ज्यादा समय बीतता है मंदिर में, कहीं प्रवचन ऑप्शन सुन के वो संन्यास ना ले ले, कहीं चले जाएंगे, वो डर रहता है। तो भगवद गीता के शुरुआत में ही धृतराष्ट्र को पेश किया गया है, यानी जो आध्यात्मिक जीवन से ही डरता है। अधिकांश लोग जो हैं वो ये हरे कृष्ण वालों को देख के डरते हैं, अरे इधर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये डर धृतराष्ट्र का। तो उनका डर ये नहीं था कि मेरा पुत्र मर जाएगा क्या, क्योंकि उनको मालूम है, क्या मालूम है, उनका पुत्र मरने वाला है। व्यास देव ने कहा उनको मालूम है कि धर्म क्षेत्र होने के नाते वो धर्म का ही पक्ष लेगा, क्षेत्र भी धर्म का पक्ष लेगा, पांडवों का पक्ष लेगा, और दूसरा कृष्ण स्वयं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप पांडवों के पक्ष में है। इसलिए हर तरीके से धृतराष्ट्र को ये मालूम था कि उनका पुत्रों का मृत्यु होने वाला है, मृत्यु होने वाला है मालूम होने पर भी अभी राष्ट्र का डर ये नहीं उनका पुत्र मर जाएंगे, उनका शोक ये नहीं उनका पुत्र मर जाएंगे, उनका शोक क्या है, उनका डर क्या है, कहीं मेरे पुत्र धार्मिक ना बन जाए। अगर धार्मिक बन जाएंगे तो क्या होगा, मेरा पीठ हिल जाएगा। अभी लेकिन श्लोक में क्या कहता है राष्ट्र, संजय को क्या कहता है कौरवों के विषय में, ये सब कौन है, मामका। लेकिन हृदय में भावना क्या है, मर जाए चलेगा लेकिन मुझे सुख देने के लिए आप जितना हो सके उतना जीवित रहना। देखिए प्रभु, भगवद गीता के पहले श्लोक में एक भौतिकवादी क्या होता है, उनकी मनोभावना क्या होता है व्यक्त किया गया है। जब ये शब्द है ना, आपको बहुत सारे लोगों ने कहते, आप बहुत सारे लोग कहते हैं आपको, हो तुम मेरे हो, आप मेरे हो मेरा ये हो, मेरे पापा मेरे मम्मी, मेरे बच्चे मेरे पत्नी मेरे पति, ये जो मेरा के पीछे कितना क्रूर भावना है पहले ही श्लोक में व्यक्त किया गया है। जब आपको कोई व्यक्ति कहता है ना तुम मेरे हो, ये समझना चाहिए कि वो धृतराष्ट्र है। खाली दो शब्द शर्मा के नहीं बोल रहा है, क्या मालूम दो शब्द सुनना चाहते हैं, हा? तुम मेरे हो, काम के हो, ये नहीं बोलता है बस। वो नहीं बोलने की वजह से आप मोहित हो जाते हो, वाह वाह वाह, तुम मेरे काम के हो, असल में मेरे नहीं हो, मेरे, अगर कोई और मेरे काम का नजर आता है तो वो मेरा है, और जब तक तुम मेरे काम के हो तुम मेरे हो, जब तक तुम मेरे काम के नहीं, जब मेरे काम के नहीं बन जाओगे तो कहो। अभी धृतराष्ट्र ने जब कहा मामका करके, किसको संबोधित करके कहा, उनके पुत्रों को संबोधित करके कहा, क्या कहा, मामका, इसका अर्थ क्या है, ये सब मेरे काम के है, तो जब तक वो नहीं मरेंगे तब तक कम से कम सीट तो रहेगा, अगर समझौता कर लिया तो आज ही सीट चला जाएगा। देखिए प्रभु जी, इस भौतिक जगत में जो आसक्ति है, जो आसक्ति लोग आपको दिखाते हैं, पहचानो उसके पीछे क्रूरता को। उसके पीछे जो जहरीली जो भावना है असत में, मेरा तभी है जब मैं हूं, मैं से मेरा उत्पन्न होता है। अज्ञान के दो पहलू है, एक क्या है, मैं, दूसरा है मेरा। ये मेरा गौण है लेकिन महत्वपूर्ण मुख्य चीज क्या है, मैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं, मेरे ये मेरा है, इससे क्यों मेरा है? क्योंकि मेरा काम का है। जब तक मेरा काम का है वो मेरा है। मान लीजिए जब किसी का पति का मृत्यु होता है, पत्नी रोती है कि नहीं? बहुत रोती है, बोर करके रोती है, ओ क्या हो गया, क्या हो गया, चला गया मुझे, छोड़ के चला गया। लेकिन देखने वालों को क्या लगता है? कितना प्रेम करती है, देखो बिचारे, लगता है कि नहीं? लेकिन वो रोने में बार बार एक ही रहता है, अभी मुझे कौन देखभाल करेगा। जैसे अगर कोई देखभाल करने वाला मिल गया तो रोना वो पति के लिए नहीं था, रोना ये था कि अभी मुझे कौन देखभाल करेगा। जाने से पहले किसी को बोल के जाता तो मेरे होती नहीं। बहुत कठोर लग सकते हैं, लेकिन सत्य है। ये समझ लीजिए, इस जगत में कोई भी किसी का नहीं है। अगर लगता है बहुत डेंजरस है, आपको अपना काम के लिए अपना रहा है, चाहे कितना भी घनिष्ठ संबंधी क्यों ना हो। इसे धृतराष्ट्र को सबसे पहला पेश किया गया है, देखो ये भौतिकवादी कौन होता है, हु इज दिस पर्सन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव मामका पांडवास्ते व किमकुर्वत संजया। ये किमकुर्वत ये शब्द में ये रहस्य छुपा हुआ है। बहिरंगी तरीके से धृतराष्ट्र ऐसा लगता है कि अपने पुत्रों से प्रेम करता है, लेकिन हृदय में अस्तित्व में वो अपने बारे में सोच रहे हैं। अभी यही, अगर धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से प्रेम होता, युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद उनके सारे 100 पुत्र मर गए, तब यही धृतराष्ट्र ने कहा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर तुम मेरे हो, अस्तित्व में मैं तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया है, सच में अस्तित्व में इस जगत में तुम्हारे अलावा मेरे लिए और कोई है नहीं। यही धृतराष्ट्र ने ये मामका शब्द युधिष्ठिर महाराज को इस्तेमाल किया। क्यों क्यों? युद्ध होने के बाद अभी अपना सीट बना के रखने के लिए कौन काम का है? अभी धृतराष्ट्र को जिसने, दुर्योधन को और 100 पुत्रों को जिसने मारा, कम से कम रोना था चाहिए, मेरे सारे 100 पुत्रों को मारा, क्रूर हो निष्ठुर हो बोलना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, ये युधिष्ठिर तुम धार्मिक हो, तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, अभी तुम मेरे हो, आओ। धृतराष्ट्र है अस्तित्व में। पूरा महाभारत में दुर्योधन विलन नहीं है। कौन विलन कौन है? धृतराष्ट्र। मतलब वो जानता था कृष्ण भगवान है, जानता था कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, लेकिन फिर भी उनका जो आसक्ति है, मैं राजा हूं, ये जो मैं करके जो भावना है, ये बहुत डेंजरस है। प्रायः सभी लोग इस जगत में अहंकार सीखते हैं, वो कभी भी आपसे प्रेम नहीं कर सकते, किसी से प्रेम नहीं कर सकते। उनका प्रेम, उनका आसक्ति केवल अपना पोस्ट, अपना पोजीशन, अपना संपत्ति, अपना स्थिति के ऊपर है। अगर ऐसे व्यक्ति प्रेम का दावा करता है, प्रस्ताव रखता है, ये समझना चाहिए कि वो आपसे कुछ फायदा उठाना चाहता है। बस क्या फायदा की आशा है, इतना ही। इज द ट्रूथ अबाउट दिस वर्ल्ड। लेकिन जब कोई कहता है आपको, वाह तुम मेरे हो, सब पिघल जाते हो, मोहित हो जाते हो। यही हमारी मूर्खता है, इज आवर फूलिशनेस। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेत उत्सव मामका पांडवास्य किमकरो तो समझया। इसके बाद देखिए ये पहले शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्र का अर्थ है खेती, गांव में भी बोलते हैं कि मेरा क्षेत्र है। अभी धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या है? जहां धर्म की खेती हो रहा है। जब आप कोई खेती करते हो, किसी के वो जानते हैं कि वो जब धान का धान उगता है साथ साथ में कुछ घास फूस भी उग जाता है साथ साथ में, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। तो ये धर्म की खेती में यानी धर्म क्षेत्र में किसान कौन है? कृष्ण है। जब एक धर्म क्षेत्र है, धर्म की खेती हो रहा है, साथ साथ में कुछ अधर्म के पौधे भी उगे, वो कौन है? वो कौरव है। अभी कृष्ण किसान होने के नाते क्या करने वाले हैं? उखाड़ के। अब ये बात कौन कह रहा है? दुर्योधन दूतराष्ट्र, यानी सरस्वती जी ने दूतराष्ट्र के मुख से ही भगवद गीता युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही सारे जगत को घोषणा कर दिया। कौन घोषणा किया? दूतराष्ट्र के द्वारा घोषणा कराई सरस्वती जी ने। यानी दूतराष्ट्र ने घोषणा किया कि ये धर्म की खेती में मेरे पुत्र अधर्म के पक्ष में है, कृष्ण उन सबको उखाड़ के फेंक दे रहे, मार देंगे, खत्म हो जाएंगे, मेरे पुत्र मर जाने। समस्या क्या है धृतराष्ट्र का? मैं और मेरा, क्योंकि वो मैं कौन हूं वो नहीं जानता है। तो ये मेरा वो जो बात है वो डुप्लीसिटी है, दिखावा मात्र है। इससे भगवद गीता में सबसे पहला भगवान क्या सिखाते हैं? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। केवल आत्मज्ञानी व्यक्ति ही प्रेम दिखा सकता है, वो करुणा दिखा सकता है। जिसका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ वो धृतराष्ट्र है। ये समझो, अभी आप कुछ काम के हो इसलिए धृतराष्ट्र जैसे लोग कहते हाँ मेरे हो, मेरी हो, मेरी वो हो, मेरा वो हो, मेरा ये है, मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है। इसका अर्थ क्या है? ये थोड़ा काम का है, ये मित्र है, कोई और काम का हो जाएगा तो इवन इतना हद तक की एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो कुछ मासूम बोलते हैं ना, बच्चा बच्चा मासूम है। अभी दिखाता हूं कितना मासूम है बच्चा। जब जन्म लेता रोता है कि नहीं मां के लिए? ये जो सेकंड भी दिखाई नहीं पड़ती है, मां एकदम भोर करके रोता है। अगर कहीं कोई डराता है तो तुरंत मां के पीछे भागता है, मां मां करके रोता है। मेरी मां बोलता है बच्चा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो शर्म आती है मां को गाड़ी में साथ में एक पार्टी में लेके जाने के लिए। हाँ? वो टाइम में रोया था, क्यों रोया था? मेरी मां बोला था क्यों? क्योंकि अभी वो काम की है मेरी। ये बद्धवस्था का ये स्वभाव है। लोग सोचते हैं कि खास करके जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वैसे घर छोड़ के आ जाते, कितना निर्दयी है, इनके हृदय में कोई दया नहीं है, ममता नहीं है, छोड़ के आ गए कि माता पिता रो रहे हैं। लेकिन भगवद गीता में शुरुआत में धृतराष्ट्र को पेश करा के दिखाया गया है, जो भौतिकवादी है उसका हृदय कठोर होता है, जिसका आपका साक्षात्कार हुआ है उसी व्यक्ति का हृदय कोमल होता है, ठीक उल्टा। एक भौतिकवादी का प्रेम को स्वीकार करना समझ लीजिए आग आग में कूदना है, या एक तप्त लोहे का को आलिंगन करने के बराबर है। स्पेशलिटी फर्स्ट वर्ड। अभी देखिए भगवद गीता का पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र ने उच्चारण किया, अगर उसमें इतना गहरा तत्व है, इतने सारे बातें हैं, जिन श्लोकों का संजय उच्चारण किया उसके अंदर कितना होगा, जिन श्लोकों को अर्जुन ने उच्चारण किया उसके अंदर कितना गहरा तत्व होगा, और भगवान के द्वारा उच्चारण किए श्लोकों में कितना होगा, ये है भगवद गीता। इससे मेरा निवेदन है आप सबसे, उसको पढ़िए श्रद्धा से जानते हुए। प्रभुपाद जी पहले श्लोक के इस श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं कि सिस्टमैटिकली बहुत श्रद्धा पूर्वक भगवद गीता पढ़ना चाहिए, श्लोकों को याद करना चाहिए, तब क्या होगा, हमारा जो आध्यात्मिक स्क्रू है ना भी ढीला है, वो टाइट होगा, तब कोई भी आध्यात्मिक कार्य बराबर कर सकते हैं। मैं तो बोलते हैं इसका स्क्रू ढीला हो गया, वैसे ही वेशभूषा से कोई आध्यात्मिकवादी नहीं बनता। Nobody can become spiritual by wearing a dress. इसको पढ़ना चाहिए। अत्यंत में हम आते हैं मंदिर में, ये क्यों आते हैं, Why are we coming? अगर कोई व्यक्ति कहता है भक्ति करने के लिए आता हूं, वो तो बात की बात है। सोचना चाहिए कि मैं इधर आत्म साक्षात्कार के लिए आ रहा हूं। प्रभुपाद ने एक ग्रंथ लिखा इसका नाम क्या है, आत्म साक्षात्कार का दुनिया, क्योंकि ये जो भक्ति शब्द जो है समाज में बहुत सहज बना दिया है। हाँ भक्ति करें, बहुत ऊंचा है बहुत भक्ति, ये शब्द बहुत पवित्र है, बहुत बड़ी चीज है, वो साधारण चीज नहीं है। कृष्ण नाम लेके आंसू बहाना यह साधारण चीज नहीं है, बहुत ऊंचा चीज है, वो PhD है। नर्स भी तो पास करे, तो इसलिए जब आप इस मंदिर में एंटर करते हो ना, कदम रखते हो ना, कम से कम उस समय सोचिए कि मैं इधर आया हूं समझने के लिए, मैं शरीर नहीं हूं, ये जो ये शरीर है ना मरने वाला है, इज गोइंग टू डाई। तब भक्ति हो सकती है, नहीं तो इम्पॉसिबल। नर्सरी पास नहीं है तो BhD कहां से बताइए। So I am coming here to realize I am not this body and spirit soul. मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तब भक्ति आनंद कांड होगा। ये समझे बिना आनंद आनंद कांड ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगा। अनेकों अनेकों भक्त मुझसे प्रश्न पूछते, प्रभु जी भक्ति करने के बाद इतना दुख क्यों है, क्योंकि आपने क्या किया मालूम है, ये भी सीढ़ी सीखे बिना आप परीक्षा देने गए, यही तकलीफ है। फर्स्ट लर्न आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, देखिए कहां से मिलता है इसका बोल, भगवद गीता से मिलता है। वो करते करते आप जप करो, ये क्या है जगत में, कहां आ गया हूं, हे कृष्ण मुझे इधर से उठाओ, ये भावना के साथ जप करो, तब देखिए जप कैसे होगा। वैसे बैठ के जप करेंगे 16 माला कर रहे तो नहीं मिले। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है भगवद गीता अच्छी तरह से पढ़िए, स्टडी विद वेरी नाइस। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, यानी क्वेश्चन, हाँ हाँ वेरी गुड, अच्छा प्रश्न। इनका प्रश्न है, ये सही बात है कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन भक्ति को शरीर के द्वारा ही होगा ना, आपका प्रश्न है बराबर। तो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हमारे पास ये शरीर है, ठीक है। और हमारे पास ये शरीर है तो उस शरीर का उपयोग क्या है, कृष्ण भक्ति करने के लिए, है कि नहीं। ये शरीर का उपयोग केवल कृष्ण भक्ति के लिए है, ये जानने के लिए सबसे पहला क्या जानना होगा, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, है कि नहीं। अगर वो जाने भी ना, अगर कोई सोचे ये शरीर कृष्ण भक्ति के लिए है, ये सिर्फ क्या मैं ही शरीर हूं, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, सबसे पहला सिखाया, क्या सिखाया, मैं शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो। तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, मन मनाभव मत भक्तो मत याजी माम मत करो। कृष्ण ने भगवद गीता में मन मनाभव मत भक्तो कहां कहा, 18 अध्याय में आखिरी में कहा। सबसे पहला क्या कहा उन्होंने, मैं शरीर नहीं है हम आत्मा। तो ये जो मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, ये आत्म साक्षात्कार की विधि में रहते हुए जब भगवान की भक्ति करेंगे तब वो भक्ति का भी आस्वादन, भक्ति का भी आस्वादन हो सकता है, दूसरा आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये जाने बिना अगर कोई भक्ति करने आता है तो क्या होगा, ज्ञान के बिना कुछ समय के बाद देखोगे वो हिलनाथ भी देर कृष्ण का भक्ति करेगा, बाद में बोले दुर्गा का भक्ति करेगा, बाद में कुछ और करता रहेगा, उसको मालूम नहीं मैं कौन हूं। इसलिए संबंध ज्ञान महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यता, इसको संबंध ज्ञान कहा जाता है। संबंध ज्ञान के बिना जो अभिधेय करता है वो भक्ति नहीं कहा जाता है, उसको सुकृति जरूर मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में अकस्मात आ गया, चरणामृत लिया, सब कीर्तन कर रहे हो, भी हाथ उठा के कीर्तन करने लगा, लेकिन अभी भी कुछ समय को याद आता रहे मुझे तो पिक्चर देखना है, ओ अरे मेरी पत्नी को तो घुमान लेके जाना था, उसने भक्ति किया, किया कि नहीं, लेकिन संबंध ज्ञान के बिना किया, उससे उसको फायदा हुआ लेकिन पूरा फायदा नहीं मिला। तो पूर्ण फायदा मतलब पूर्ण जो सिद्धि कृष्ण प्रेम तभी प्राप्त होगा जब हम संबंध ज्ञान के साथ भक्ति करते, ठीक है। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ हाँ बराबर, हाँ अच्छा प्रश्न, वेरी गुड क्वेश्चन। इनका प्रश्न है कि जब भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो हाँ किसी से प्रेम करता है, कोई ना कहीं कुछ स्वार्थ है तभी तो करता है। जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है, आपका प्रश्न है ना। हाँ थोड़ा सा एक ऐसा बात बताने वाला हूं आप आश्चर्य होगा, इसलिए सारे शास्त्र कहता है आप स्वार्थी बनो, क्या बनो, स्वार्थी बनो। जितने भी भौतिकवादी हैं वो स्वार्थी नहीं है, वो बहिरर्थी है, क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। दो शब्द है, एक है स्वार्थ, दूसरा क्या है बहिरर्थ, स्वार्थ। तो स्वार्थी बनने के लिए सबसे पहला क्या जानना होगा, स्व मतलब मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। आत्मा का अर्थ वास्तविक सिद्धि या संबंध किसके साथ में है? कृष्ण के साथ में है। तो वास्तविक स्वार्थ क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। ये भौतिकवादी कहता है, लोग कहते हैं स्वार्थी है, नहीं वो स्वार्थी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं वो स्वार्थ क्या है। मैं कौन हूं मालूम होगा तभी तो स्वार्थी बन सकता है। ये शरीर जो है ये बहिर चीज है, इससे प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, ये सब बहिरती है, स्वार्थी नहीं है। 100% स्वार्थी वही है जो कृष्ण भक्ति करता है, बाकी सब जितने भी वो कौन है। इसलिए स्वार्थी बनो, हम चाहते हैं स्वार्थी बनो, वी वॉन्ट यू टू बिकम सेल्फिश। सेल्फ क्या वही नहीं मानोगे, सेल्फिश क्या बनोगे। इसलिए स्वा मैं कौन हूं, सा का अर्थ है खुद, वो जानना चाहिए। मान लो कोई मैं बोलता है कि इंजीनियर बनना चाहता है, तो मैं इंजीनियर हूं बोलता है, इंजीनियरिंग क्या हो तभी तो मालूम होगा इंजीनियर। तो स्वार्थी बनना है तो स्वा क्या मालूम होना चाहिए। तो इसलिए द डिवोटीज आर रियली सेल्फिश। प्रभुपाद जी भगवद गीता में कहते हैं, हाँ किसके लिए, मोह संसार के प्रति मोह। आपका प्रश्न यह है संसार के प्रति मोह जो है ये भक्ति में बड़ा बाधक है कि नहीं, आपका प्रश्न यह है। अच्छा प्रश्न पूछा। अगर मान लो कि मोह का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोह। जो चीज है उसको नहीं करके समझना, जो चीज नहीं है उसको है करके समझना, उसको मोह कहा जाता है, है कि नहीं। हाँ, उसको दैट इज कॉल्ड मोह। तो संसार के प्रति मोह का अर्थ है हम अभी भी उस संसार जो है उसको नहीं समझ रहे, जो चीज नहीं है उसको है करके समझ रहे। तो समस्या क्या है, हम संसार की या संसार में विषय वस्तुओं की या कोई एक विशेष व्यक्तियों की उसकी वास्तविकता नहीं जानते। जैसे उसकी वास्तविकता मालूम पड़ जाए तो अपने आप मोह खत्म हो जाता है। जैसे हमने धृतराष्ट्र के बारे में चर्चा की है कि नहीं, अभी यही प्रवचन दुर्योधन को सुनाया जाए, यही प्रवचन दुर्योधन को सुनाया जाए, क्या दुर्योधन बोलेगा मेरे पिता, पिताश्री करके बोलेगा, पिता के पास जाएगा? अभी दुर्योधन धृतराष्ट्र से मोह क्यों है, क्योंकि धृतराष्ट्र की वास्तविक मनोभावना नहीं जानता है। और जैसे उनको मालूम पड़ गया कि ये संसार की वास्तविकता, और तुरंत और वो भक्ति में जुड़ सकता है, सीरियसली प्रगति कर सकता है, क्योंकि जो वस्तु जो व्यक्ति जिसके प्रति हमारा मोह है, वो मोह इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति का स्वरूप हमको नहीं मालूम, उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप हमको नहीं मालूम। अगर मालूम पड़ जाए इसकी वास्तविकता तो भाग जाएगा, है कि नहीं। इतना सब कुछ भूल जाइए, एक सरल चीज बताता हूं। अगर इवन साधारण परिवारों में, मित्रों में, जो भी है, कॉलेज में कहीं भी हो, एक परिवार को ले लीजिएगा, पति और पत्नी है, पति के मन में क्या क्या बीत रहा है सब पिक्चर के रूप में पति को मालूम पड़ गया, मोह रहेगा? वो आपको ही मालूम है। पति के मन में क्या क्या बीत रहा है, सब कुछ जो मन में आया सब दिखाई पड़ रहा है पत्नी को, मोह रहेगा। साधु रक्षक को हंस रहे हाँ? हमको ये बात मालूम नहीं है इसलिए साथ में है, अगर मालूम पड़ जाए ना कोई कोई कहीं साथ में नहीं रहेगा, भाग जाएगा बोले ये इसके साथ रहता हूं क्या मैं ये मोह तो संसार की वास्तविकता जब तक उसके साथ जो उसका ज्ञान रहता है तब तक मोह रहता है। जैसे मैं अभी कहा उदाहरण के रूप में, दुर्योधन को अपने पिता के प्रति मोह था क्योंकि ये प्रवचन नहीं सुना था। अगर मनोभावना मालूम पड़ जाए, धृतराज मेरे पिताजी को मालूम था मैं मरने वाला हूं फिर भी युद्ध करने भेजा, कैसे पिताजी भेजा ऐसा बोलेगा है क्या? हाँ बराबर। अच्छा प्रश्न अच्छा प्रश्न पहले नरसिंह के बारे में कहता हूँ। नरसिंह ने प्रहलाद महाराज से पूछा आपको क्या चाहिए, प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले क्या बोला, मैं आपका स्मरण आपका भक्ति कुछ मांगने के लिए नहीं किया हूं, आप क्या मुझे एक व्यापारी समझते हो? श्लोक याद में ये वणिक का शब्द आता है, मैं क्या वणिक हूं? तो उसके दर्शन ने कहा नहीं फिर भी कुछ पूछो, मैं तुमको तुमसे प्रसन्न हूं। तब प्रहलाद महाराज ने कहा अगर आप कुछ देना ही चाहते हो, मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी को उद्धार। तो ये प्रसंग में कोई व्यक्ति सोच सकता है कि प्रहलाद अपने पिता से आसक्त था, दूसरा एक भक्त के ऊपर कितना भी कोई अत्याचार करे वो भक्त केवल हित ही सोचता है उसके बारे में, ये दोनों आप देख सकते हो। तो इस प्रसंग से ये दिखाया जा रहा है सारे जगत को, क्या दिखाया जा रहा है, एक भक्त का महिमा क्या है, उनकी दया क्या है, जो जिसने उनके ऊपर उनको मारने का प्रयास किया भी वो उनके उद्धार करने के लिए सोचते हैं। दूसरी ओर ये भौतिक जगत में जितने भी संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, माता पिता ये सब संबंध है, ये संबंध असत्य है। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय के लिए रहता है, बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन सत्य है क्योंकि इनका जन्म इसके कोख से हुआ है कि नहीं, इसके वजह से दोनों को ही एक दूसरे के कर्तव्य है कि नहीं। पुत्र का अर्थ क्या है, जो अपने पिता का पूत नामक नरक से त्राण कराता है उसको पुत्र कहा गया है। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा आप आइए मंदिर में आके, नहीं मेरा क्या मेरे पिताजी को देखभाल करना है ना, तो मैंने उनको उनको सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो क्या क्या करते हो? पिताजी को टीवी देखना है टीवी देते हो, पिक्चर देखना पिक्चर लेके जाते हो, वो खिलाते हो, सब कुछ करते हो। तो मेरा मैं उनको पुत्र हूं ना, तब मैंने उनको समझाया पुत्र का अर्थ क्या है, तो वो डर गया बेचारा। तो मैंने कहा जो पुत्रा यानी पुत नामक नरक से त्राण कराने वाला वो पुत्र होता है, लेकिन तुम पुत्रा नहीं हो, तुम मूत्रा हो, क्योंकि उनको त्राण कराने के बदले उनको उधर लेके जा रहे हो, है कि नहीं। तो ये जो भौतिक जगत में जो संबंध है वो संबंध आसक्त होने के लिए नहीं बनाया भगवान ने, कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान की धाम में जाने के लिए बनाया है। समस्या क्या है, हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं और आसक्ति को बढ़ा देते हैं, आसक्तियों को बढ़ाते बढ़ाते कर्तव्य भी नहीं करते। तो पुत्र का कर्तव्य है पिता को नरक से बचाना, और पिता का कर्तव्य है पुत्र को आध्यात्मिक शिक्षा देना। जन्म देने के बाद 5 साल तक लाड़ प्यार करके उसको गुरु के पास भेज देना, क्योंकि वो खुद आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि आसक्ति मोह है। उपनयन संस्कार करा के उनको आध्यात्मिक शिक्षा गुरु के पास भेज देना, ये पिता का कर्तव्य है। तो कर्तव्य महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रहलाद महाराज के प्रसंग में 2 चीज है, एक तो भक्त का महिमा का, दूसरा पुत्र होने के नाते ठीक है आप भगवान आप कर रहे तो ठीक है कर दो, दूसरी और अभिमन्यु। अर्जुन ने अभिमन्यु को देख के रोया, अभिमन्यु कौन है, साधारण व्यक्ति है, पूरा महाभारत का हीरो है, हीरो ऑफ द महाभारत। ये थोड़ा सा प्रश्न को ऐसा रखिए, व्यास देव की पत्नी ज्वाली, उनकी गर्भ से सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, प्रकट होते ही सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, जंगल की ओर, व्यास देव ने क्या किया था, पीछे पीछे भागे, कैसे भागे, पुत्रे जि तन्मयतया। उस समय ऐसा लग सकता है व्यास देव सारे वेदों को रचना किया, भगवत गीता को रचना किया, वो पुत्र मोह में भाग रहे, लेकिन ये पुत्र मोह नहीं है। आचार्यगण कहते हैं व्यास देव को मालूम था कि सुखदेव गोस्वामी कौन है, कि महान वैष्णव है। तो व्यास देव के हृदय में क्या प्रकट हुआ, वैष्णव विरह था। तो अर्जुन के विषय में ये 100% वैष्णव विरह करके नहीं बोल सकते हैं, वो एक क्षत्रिय वंश के होने के नाते जिस प्रकार अभिमन्यु को मारा गया है उसको देख के अर्जुन को शोक हुआ कि इस प्रकार मारा गया है, वो भी एक बालक को, कितना 22 महारथी घेर के उनको मारना, ये युद्ध में कहीं नियम में नहीं आता है। उसको देख के अर्जुन ने शोक व्यक्त किया, स्वाभाविक है क्षत्रिय को इस प्रकार करना, लेकिन उसको लेके जीवन भर नहीं रोया, वो क्षण के लिए रहता है लेकिन बाद में वो शांत हो जाता है। हाँ, वो युद्ध में क्षत्रिय का स्वभाव है, कर्तव्य, उससे कोई तकलीफ नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन उस प्रकार का क्षत्रिय भी होना चाहिए, उस प्रकार का भक्त भी होना चाहिए, और कुछ मंत्र जाप करने के द्वारा। वैसे तो मंत्र जाप में कृष्ण नाम में कृष्ण प्रेम रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो प्रेम बहुत ऊंचा चीज है, तुरंत कल नहीं मिल जाएगा आपको, मिल नहीं सकता अगर उस प्रकार से काम करेंगे, लेकिन सबसे पहला ये दिखाएगा आपको, ये ज्ञान को साक्षात्कार करने की शक्ति दे देगा मंत्र जप के द्वारा। ठीक है, मंत्र जप के द्वारा सबसे पहला सत्वगुण में आएंगे, सत्वगुण में हर चीज सत्वम संजायते ज्ञान दिखाई पड़ेगा आपको, रजगुण तमोगुण में इस बातें दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मंत्र जप, हमारे मंत्र जप की सिद्धि क्या, कृष्ण प्रेम है उनका लक्ष्य है, लेकिन वो प्राप्त करना है तो सत्वगुण में तो आना है ना, तो वो सत्वगुण तुरंत देगा आपको। सुबह जल्दी उठ के जप करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, इससे जप करते करते आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को प्राप्त करते करते रहेंगे, सत्वगुण में रहेंगे, सत्वगुण में हम कृष्ण का कृष्ण प्रेम को देख सकते हैं और पाप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे।